क्या हो अगर कोई आकर कहे कि किसी पर गुस्सा करना या उसे बेवकूफ कहना भी असल में हत्या करने जैसा ही बड़ा अपराध है?
बिल्कुल, सुनने में ही कितना अजीब लगता है।
वही तो। या फिर अगर किसी की आंख उससे कोई गलत काम करवाती है तो उसे निकाल कर फेंक देना चाहिए। मतलब अचानक से नैतिकता की यानी मोरालिटी की जो एक सीधी साफ समझ होती है ना, वो पूरी तरह से हिला कर रख दी जाती है।
सही बात है।
सदियों पहले एक पहाड़ी पर एक ऐसा ही भाषण दिया गया था जिसने इंसान के अंदरूनी सच और कानून की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख दिया था।
और यही वजह है कि ये विषय इतना रोचक हो जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो नियम और नियत के बीच की खाई को सामने लाती है और एक तरह से इंसान को उसके सबसे गहरे छुपे हुए इरादों के साथ आमने सामने खड़ा कर देती है।
हाँ, आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बिल्कुल ऐसी ही एक ऐतिहासिक और नैतिक भूलभुलैया में उतरने वाले हैं। हम डॉक्टर क्रेग कीनंग के एक बेहद दिलचस्प लेक्चर पर चर्चा कर रहे हैं जो मैथ्यू 5, जिसे सदियों से सर्मन ऑन द माउंट या पहाड़ी उपदेश कहा जाता है, उस पर आधारित है।
एक मास्टर क्लास है ये।
बिल्कुल। और शुरू में ही ये साफ करना बहुत जरूरी है कि इस चर्चा का उद्देश्य किसी धार्मिक दृष्टिकोण का समर्थन करना या उसका प्रचार करना बिल्कुल नहीं है।
हाँ, वही हमारा लक्ष्य तो इस ऐतिहासिक और साहित्यिक भाषण की गहराइयों को समझना है, इसकी जो कड़ी शर्तें हैं और इसमें इस्तेमाल की गई अनोखी भाषा शैली है, उस पर ध्यान देना है।
ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोल के समझते हैं, क्योंकि लगभग 2000 साल पुराना ये टेक्स्ट आज के सामाजिक और नैतिक विषयों को समझने के लिए वाकई एक मास्टर क्लास है।
तो इस भाषण के टेक्स्ट में उतारने से पहले उस संदर्भ को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि पिछले 2000 सालों में लोगों ने आखिर इसका सामना कैसे किया।
क्योंकि मांगे इतनी कड़ी थीं।
हाँ, इसमें मांगी गई शर्तें इतनी रेडिकल और कड़ी थीं कि अलग अलग दौर के लोगों को अपने बचाव के लिए इसकी अलग अलग व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ी।
अच्छा।
डॉक्टर कीनर बताते हैं कि सबसे पहले लिटरल अप्रोच आया। यहां लोगों ने इसे बिल्कुल शब्दशा लिया, जैसे डेजर्ट फादर्स जो तीसरी सदी में थे।
डेजर्ट फादर्स मतलब उन्होंने क्या किया?
उन्होंने सच में समाज, पैसे और आराम को छोड़ दिया और इजिप्ट के रेगिस्तान में जाकर रहना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि समाज में रहकर इन कड़ी शर्तों का पालन असंभव है।
ओह वाओ।
फिर तो जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा होगा, इसे लिटरली मानना और भी मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि अगर पूरा समाज ही रेगिस्तान में चला जाए तो दुनिया कैसे चलेगी। सही पकड़ा। और इसीलिए बाद में मिडीवल अप्रोच आया। मध्यकाल में जब चर्च और राज्य के पास बड़ी ताकत आ गई तो उन्होंने थोड़ा प्रैक्टिकली सोचा।
उनको समझ आया कि प्रैक्टिकल होना पड़ेगा।
हाँ, उन्होंने सोचा कि अगर एक राजा अपने दुश्मन को दूसरा गाल आगे कर देगा तो देश तो तबाह हो जाएगा। तो उन्होंने एक दो तरफा सिस्टम बना दिया। उन्होंने तय किया कि ये कड़ी नैतिक शर्तें आम इंसान के लिए हैं ही नहीं।
अच्छा, तो किसके लिए थी?
ये सिर्फ पादरियों, सन्यासियों या क्लर्जी के लिए एक ऊंचा स्टैंडर्ड है। आम आदमी बस अपने बेसिक नियम माने।
एक तरह से प्रैक्टिकल बनने के नाम पर जिम्मेदारी से बचने का एक आसान रास्ता निकाल लिया। और नोट्स में एक डिस्पेंसेशनल अप्रोच का भी जिक्र है जिसने ये लॉजिक लगाया कि इंसान अभी इतना मॉरली वीक है कि वो इन नियमों पर चल ही नहीं सकता।
बिल्कुल।
19वीं और 20वीं सदी में एक लिबरल सोशल गॉस्पल अप्रोच आया जिनका मानना था कि इन नियमों को लागू करके हम इसी दुनिया में अभी एक परफेक्ट यूटोपियन समाज बना सकते हैं।
वही, इन सब अलग अलग व्याख्याओं के अपने अपने तर्क थे, पर विद्वान जिस व्याख्या को सबसे ज्यादा सटीक मानते हैं उसे थियोलॉजी की भाषा में इनॉग्रेटेड एस्केटोलॉजी कहते हैं।
बापरे, ये तो काफी भारी भरकम शब्द हो गया।
हाँ, शब्द भारी हैं, पर इसका आसान मतलब ये है कि एक आदर्श राज्य की शुरुआत हो चुकी है, पर वो अभी अपने पूर्ण रूप में नहीं आया है। इसलिए ये नियम आने वाले उस आदर्श दौर के नियम हैं जिन्हें एक अनुयायी को अभी से अपनी जिंदगी में जीने की कोशिश करनी है,
भले ही आसपास की दुनिया उसके बिल्कुल उलट चल रही हो।
बिल्कुल सही।
ये कुछ ऐसा है जैसे हमें किसी ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का यूजर मैनुअल दे दिया गया हो जो अभी पूरी तरह लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन हमें उसके बेटा वर्जन को आज ही अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना सीखना है।
कमाल की तुलना है।
हाँ, मैनुअल तैयार है, हालांकि हमारा हार्डवेयर अभी पूरी तरह से उसके काबिल शायद नहीं है।
ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और उस बेटा वर्जन को पेश करने वाले यानी जीसस, उनका अंदाज भी उतना ही अनोखा था। उस दौर में वो एक ही वक्त में एक सेज यानी विद्वान की तरह काम कर रहे थे जो कहावतें सुनाता है,
और दूसरी तरफ एक प्रॉफिट या पैगंबर की तरह थे जो सीधे और कड़वे सच बोलकर चेतावनियां देता है।
एग्जैक्टली। एक आम राबी या गुरु हमेशा पुराने विद्वानों का हवाला देता था। वो कहते थे राबी हिलेल या राबी शम्माई ने ऐसा कहा इसलिए ये ठीक है। लेकिन जीसस का अंदाज अलग था। वो अपनी बात आमेन मैं तुमसे कहता हूँ से शुरू करते थे।
आमेन।
लेकिन ये तो आखिर में बोलते हैं ना।
वही तो बात है। आमेन जिसका मतलब है सच में या निश्चित रूप से, इसे आम तौर पर किसी दूसरे की बात पर सहमति जताने के लिए आखिर में बोला जाता था, पर इसे अपनी ही बात की शुरुआत में लगाना, वो भी बिना किसी और का हवाला दिए, एक जबरदस्त अधिकार को दर्शाता था।
उनका ये अधिकार भरा अंदाज सिर्फ शब्दों के शुरुआत तक सीमित नहीं था। उनकी भाषा में एक ऐसी शैली थी जो सुनने वालों को सच में अंदर तक हिला दे। मैं नोट्स में देख रही थी कि एक जगह उन्होंने 10,000 टैलेंट्स के कर्ज का उदाहरण दिया है।
वो बहुत बड़ी रकम थी।
बड़ी रकम। एक आम मजदूर को एक टैलेंट कमाने के लिए लगभग 15 से 20 साल लग जाते थे। 10,000 टैलेंट्स उस वक्त पूरे रोमन एम्पायर की सालाना आमदनी से भी ज्यादा बड़ी रकम थी। कोई राजा किसी को इतना कर्ज कैसे दे सकता है?
वही ना, असंभव है। और सिर्फ यही नहीं, आंखें निकालने का जिक्र या बुरे लोगों को टुकड़ों में काटने की ग्राफिक बातें।
देखो, साहित्य की भाषा में इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की टेक्निक को हाइपरबोल या अतिशयोक्ति कहते हैं। उस ओरल कल्चर में जहां लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, वहां बोलने वाले को अपनी भाषा से सुनने वालों के दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनानी होती थी जो उन्हें हमेशा याद रहे।
हाँ, आंख निकालने की बात सुनकर वहां बैठे लोग शायद चौंक गए होंगे या डर गए होंगे।
बिल्कुल। लेकिन यहाँ आधुनिक विद्वानों पर एक बहुत बड़ा आलोचना का मुद्दा भी आता है। सोरेन कीयरकेगार्ड और डीट्रिच बोनहोफर जैसे विचारकों ने आज के स्कॉलर्स की कड़ी आलोचना की है। उनका मानना है कि आज की कंफर्टेबल एकेडमिया इन बातों को सिर्फ एक लिटरेरी हाइपरबोल कहकर इनकी नैतिक गंभीरता को पतला कर देती है।
अच्छा, बोनहोफर का जिक्र आना यहाँ बहुत खास है क्योंकि उन्होंने नाजी जर्मनी के दौर में ये सब लिखा था, है ना?
सही कहा। बोनहोफर एक ऐसे समझ में जी रहे थे जो नाजियों के घोर पाप और अत्याचार में डूबा हुआ था। उनके लिए इन बातों को सिर्फ ये तो एक फिगर ऑफ स्पीच है कहकर ताल देना एक लग्जरी थी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे।
मतलब बुराई को नजरअंदाज करना।
हाँ, अगर आप बुराई को सहन कर लेंगे तो आप उसमें शामिल हो जाएंगे। उनके हिसाब से आज के विद्वान हमें ये सिखाते हैं कि भाषण की इन मांगों को इग्नोर कैसे किया जाए।
और कीयरकेगार्ड ने भी कुछ कहा था इस पर।
कीयरकेगार्ड ने मजाक उड़ाया था कि अगर हम अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दें तो हम पूरी दुनिया को सिर्फ भिखारियों का एक झुंड बना देंगे, इसलिए बेहतर है कि इसे मेटाफोर मान लो। पर दोनों का पॉइंट यही था कि हाइपरबोली के नाम पर जिम्मेदारी से भागना गलत है।
यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि मेरे दिमाग में नेचुरली एक सवाल उठता है, अगर मुझे पता है कि बोलने वाला एग्जैजरेशन कर रहा है, अतिशयोक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या हम इन्हें सिर्फ एक पोएटिक फिगर ऑफ स्पीच मानकर हल्के में नहीं ले सकते?
यहीं पर उलझन शुरू होती है।
मतलब इसमें और सचमुच अपनी आंख निकालने में क्या फर्क रह गया फिर?
फर्क इंटेंशन या नियत का है। हाइपरबोले का उद्देश्य बात की प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी बताना नहीं होता, बल्कि मुद्दे की नैतिक गंभीरता की तरफ ध्यान खींचना होता है। आंख निकालने का मतलब फिजिकल म्यूटिलेशन नहीं है।
तो फिर क्या है?
इसका मतलब है कि आपके अंदर जो बुरी नीयत या पाप पनप रहा है उसे जड़ से खत्म करने के लिए आपको एक्सट्रीम स्टेप्स लेने होंगे। पाप एक कैंसर की तरह है। डॉक्टर आपको सिर्फ दर्द की दवा नहीं देता, वो सर्जरी करके उस हिस्से को ही निकाल देता है।
हाँ, ये बात समझ आती है।
साथ ही हमें ये याद रखना चाहिए कि भाषण की ये शर्तें किसी सेकुलर सोसाइटी पर जबरदस्ती थोपने के लिए नहीं थीं। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए थीं जो खुद से आगे आकर अनुयायी यानी डिसाइपल बनना चाहते थे।
ठीक है, अगर इसकी मांगे इतनी एक्सट्रीम और रेडिकल थीं जिसमें हर रोज अपनी इच्छाओं का गला घोटना पड़े, तो आखिर ये भाषण किसे अट्रैक्ट कर रहा था? उस वक्त के किस तबके के लोग इसे सुनना चाहेंगे?
ये बहुत जरूरी सवाल है।
क्योंकि अगर किसी सामाजिक क्रांति की बात होती तब तो लोग जोड़ तोड़ कर आते, लेकिन ये तो सीधा शांति और नम्रता की बात कर रहा था। और इससे हम भाषण के उस हिस्से पर आते हैं जिसे बियाटिट्यूड्स या आशीर्वाद के वचन कहा जाता है।
बियाटिट्यूड्स का हिस्सा साहित्यिक तौर पर बहुत खूबसूरत है। ग्रीक भाषा में इसके पहले चार आशीर्वाद पा अक्षर से शुरू होते थे।
पा से? जैसे?
जैसे प्लूटोखोई यानी गरीब, पांतोहाइटिस शोक करने वाले, प्राइसिस नम्र या मीक, और पिनेनोटिस भूखे। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग लिखवा कर नोट्स नहीं ले सकते थे, वहां ऐसे एलिटरेशन से इन बातों को याद रखना आसान हो जाता था।
हाँ, एक तरह से मेमोरी ट्रिक थी।
बिल्कुल, पर इनका मैसेज अपने आप में उस वक्त के रोम और वहां के समाज के बिल्कुल खिलाफ था। रोम तो ताकत, हिंसा और दबंगई से चलता था, लेकिन यहां आशीर्वाद उन्हें मिल रहा था जो टूटे हुए थे, नर्म थे और जो शांति लाते थे।
उस वक्त वहां पे कुछ ऐसे दल थे जैसे ज़ीलॉट्स, जो तलवार और हिंसा के जोर पर अपना राज्य रोम से छीन लेना चाहते थे। उनके लिए तो ये शांति की बात एकदम फजूल और डरपोकपन का प्रतीक लगी होगी।
उन्हें शायद ऐसा लगा हो, पर इतिहास ने साबित किया कि हिंसा का रास्ता उनके लिए तबाही लाया। डॉक्टर कीनर इस बात पर जोर देते हैं कि लगभग 40 साल बाद, साल 70 AD में, जब इन्हीं क्रांतिकारियों ने रोम के खिलाफ पूरी ताकत से विद्रोह किया, तो रोम की सेना ने जेरूसलम को बुरी तरह कुचल दिया।
ओहो, पूरी तरह तबाह कर दिया।
हाँ, लाखों लोग मारे गए और मंदिर मिट्टी में मिला दिया गया, जिसने ये साबित कर दिया कि हिंसा के सहारे राज्य नहीं जीता जा सकता। इसलिए ब्लेसड आर द पीस मेकर्स सिर्फ एक स्पिरिचुअल थॉट नहीं था, बल्कि उस समाज को बचाने की एक प्रैक्टिकल वार्निंग भी थी।
ठीक है, पर अगर हिंसा नहीं करनी है, तलवार नहीं उठानी है, तो एक फॉलोअर उस समाज पर अपना प्रभाव कैसे डालेगा? इस सवाल का जवाब देने के लिए भाषण में नमक और रोशनी यानी सॉल्ट एंड लाइट का मेटाफर आता है। कहा गया कि अनुयायी जमीन का नमक है, पर अगर नमक अपना असर खो दे तो वो किस काम का?
हाँ, और वैसे उस जमाने का एंशंट नमक आज के प्योर पैकेट वाले नमक जैसा नहीं होता था।
उसमें इम्प्योरिटीज होती होंगी।
बिल्कुल, बहुत इम्प्योरिटीज होती थी, और अगर नमकीन हिस्सा धुल जाए तो बस बेकार सफेद पाउडर बचता था।
हाँ, और इस पर मुझे सोर्स में दी गई रैबाई टर्फोन की वो कहानी बड़ी दिलचस्प लगी, जब उनसे किसी ने पूछा था कि इस बेस्वाद नमक का आखिर करें क्या।
हाँ, वो कहानी इस अब्सर्डिटी को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। पहली शताब्दी के आखिर में किसी ने रैबाई टर्फोन से ये बड़ा ही बेतुका सवाल पूछा कि अगर नमक अपना स्वाद खो चुका है तो उसे वापस नमकीन कैसे बनाएं?
तो उन्होंने क्या बोला?
तो रैबाई ने भी उतना ही अजीब जवाब दिया। उन्होंने कहा, उस पर खच्चर की खैरदी डाल दो, यानी आफ्टर बर्थ ऑफ अ म्यूल।
जो कि बायोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल असंभव है। खच्चर या म्यूल तो बांझ होते हैं, जब वो रिप्रोडक्शन ही नहीं कर सकते तो उनकी आफ्टर बर्थ कहां से आएगी।
अच्छा, और यही उनके मजाक का पॉइंट था। रब्बी समझा रहे थे कि अगर तुम एक ऐसी चीज के बारे में सवाल करोगे जिसका वजूद ही खत्म हो चुका है, तो जवाब भी वैसा ही असंभव मिलेगा।
अच्छा, मतलब बेकार चीज का बेकार जवाब।
हाँ, एक फॉलोअर या अनुयायी जो अपने नैतिक सिद्धांत खो चुका है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं बची। वो एग्जैक्टली उस बेस्वाद नमक जैसा बेकार है।
नमक की उपयोगिता तो चलो समझ आती है, पर यहाँ रोशनी वाले हिस्से में मुझे एक विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। एक तरफ भाषण कहता है 5वें चैप्टर में कि अपनी रोशनी दुनिया को देखने दो, यानी अपने अच्छे काम लोगों के सामने करो ताकि लोग उसकी तारीफ करें। लेकिन थोड़ा ही आगे बढ़कर 6वें चैप्टर में कहा गया है कि अपने अच्छे कामों का दिखावा मत करो, वरना ऊपर वाले से कोई इनाम नहीं मिलेगा। एक तरफ रोशनी दिखानी है और दूसरी तरफ उसे छुपाना है, इसको कैसे समझें?
देखो, ये कॉन्ट्रडिक्शन इंटेंशनल है ताकि पढ़ने वाला यहाँ रुककर सोचे। मुद्दा ये नहीं है कि आप अच्छे काम कहाँ कर रहे हैं, मुद्दा आपकी नीयत और आपके ऑडियंस का है।
नीयत और ऑडियंस।
हाँ, आप दान किस लिए कर रहे हैं? अगर आप चिराग इसलिए जला रहे हैं ताकि अंधेरे में दूसरों को रास्ता दिखे और ईश्वर की महिमा हो, तो वो रोशनी है। लेकिन अगर आप अच्छे काम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग आपके नाम के बोर्ड लगाएं और आपको महान समझें, तो आप सिर्फ अपने ईगो को चमका रहे हैं।
ओह, तो असली सवाल यह है कि आपकी जिंदगी का ऑडियंस कौन है? क्या आप 4 लोगों के लाइक्स और तारीफ के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, या उसके लिए जो अंदर की हर बात जानता है?
बिल्कुल यही बात है।
तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम नियत और मोटिव की बात करते हैं, तो ये सीधा उस वक्त के सबसे कड़े कानून पालन करने वाले दल यानी फैरीसियों की अप्रोच से टकराता है ना?
हाँ, क्योंकि उनके लिए मोटिव से ज्यादा इम्पोर्टेंट था कानून के हर एक अक्षर का ब्लाइंडली पालन करना।
वही,
और इसलिए भाषण में ये साफ किया गया कि कानून का एक बिंदु या एक मात्रा भी कभी खत्म नहीं होगी। इसे समझाने के लिए हिब्रू भाषा के सबसे छोटे अक्षर योड का जिक्र आता है।
हाँ, योड, जो सच में बस एक छोटे से अपोस्ट्रोफी जैसा दिखता है। रब्बियों के बीच इस छोटे से योड की बहुत मजेदार कहानियां मशहूर थीं।
जैसे कौन सी कहानी?
जैसे जब जेनेसिस में अब्राहम की पत्नी सराय का नाम बदलकर सारा किया गया, तो उनके नाम से एक योड हटा दिया गया था। कहा जाता था कि उस योड ने तब तक शिकायत की जब तक कि उसे सालों बाद मोजस के उत्तराधिकारी जोशुआ के नाम में नहीं लगा दिया गया। और एक दूसरी कहानी में योड ने किंग सोलोमन की शिकायत की थी।
उन कहानियों का उद्देश्य दरअसल लोगों में यह भावना जगाना था कि स्क्रिप्चर का एक छोटा सा कॉमा, एक छोटी सी लाइन भी खुद मुकम्मल है, उसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता।
सही बात है।
रब्बियों के मुताबिक कानून में सबसे हल्का नियम था किसी चिड़िया के घोंसले से बच्चे निकालते वक्त माँ को जिंदा छोड़ देना, और सबसे भारी नियम था अपने माता पिता का आदर करना। लेकिन इन दोनों को मानने पर मिलने वाला इनाम बराबर बताया गया था,
ताकि कोई भी इंसान नियमों को अपने हिसाब से चुनना सके। और इसीलिए फैरिसीज ने इन नियमों को बचाने के लिए एक नया तरीका निकाला। उन्होंने कानून के गिर्द बाड़ यानी फेंस अराउंड द लॉ बनाना शुरू कर दिया,
ताकि मूल नियम टूटने की नौबत ही ना आए।
हाँ, ये बात उन्होंने उस डर से बनाई थी क्योंकि हिस्टोरिकली कानून तोड़ने की वजह से ही उनका देश तबाह हुआ था। पर यह बात धीरे धीरे इतनी स्ट्रिक्ट होती गई कि लोग इस बात पर बहस करने लगे कि आराम के दिन यानी सैबथ पर उस मुर्गी का अंडा खाया जा सकता है जिसने उसे उसी दिन दिया हो या नहीं।
और यही सबसे बड़ा अहा मोमेंट है इस पूरे विश्लेषण का। फेरिसीज उस बात पर फोकस कर रहे थे, वो रूल्स के जरिए बाहरी बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन जीसस ने भाषण में उस बांध को तोड़कर सीधा कानून के दिल, जिसे खवाना कहा जाता है, उस पर वार किया,
सीधा नियत पर।
हाँ, देखिए, एक कानून आपको चोरी करने से रोक सकता है, पर वो आपके अंदर चोरी करने की इच्छा को नहीं मार सकता। जब आपका दिल और आपकी नीयत बदल जाती है तो आपको उस कानून को तोड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं होती।
कानून कहता था हत्या मत करो, तो एक स्ट्रिक्ट फैरिसी कह सकता था, देखो, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। पर यहां भाषण ने परिभाषा ही बदल दी। कहा गया कि क्रोध करना या किसी का अपमान करना ही मर्डर के बराबर है। अगर तुमने अपने किसी साथी को राका यानी बेवकूफ कहा तो तुम सैनहेड्रिन के सामने पेश होने के हकदार हो। यहां सैनहेड्रिन उस वक्त का सबसे बड़ा कानूनी दरबार था। लेकिन अगर तुम किसी को नफरत से भरे हुए दिल से देखते हो तो तुम गहना की आग के हकदार हो।
यहां इन दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। सैनहेड्रिन एक दुनिया का, इंसानों का कोर्ट था, लेकिन गहना, जो उस वक्त जरूसलेम के बाहर एक घाटी थी जहां कूड़ा जलाया जाता था, उसे नरक की आग या डिवाइन पनिशमेंट का प्रतीक माना जाता था।
तो मतलब अंदर की नफरत और भी खतरनाक है।
हाँ, कहा यह जा रहा था कि किसी का नाम बिगाड़ना या अपमान करना सिर्फ एक छोटे जुर्माने की बात नहीं है, वो एक ऐसी नफरत है जो सीधा उस परम शक्ति के सामने जुर्म है।
बिल्कुल, और यही लॉजिक उन्होंने व्यभिचार यानी अडल्ट्री वाले टेक्स्ट पर भी लागू किया। कानून कहता है अडल्ट्री मत करो, पर यहां कहा गया कि मन में लस्ट या लालच लाना ही पाप कर देना है। इसे सीधा 10वें कमांडमेंट से जोड़ दिया गया जो कहता है किसी और की चीज का लालच मत करो।
सही कहा। और डॉक्टर कीनर यहां एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि उस वक्त की ग्रीक और रोमन दुनिया में अक्सर पुरुष महिलाओं पर दोष डालते थे। वो कहते थे कि औरतों के बाल या उनके कपड़े उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं,
जो कि आज भी देखने को मिलता है।
हाँ, पर इस भाषण ने पूरा ब्लेम पुरुष की आंख और उसकी अपनी नीयत पर डाल दिया। ये उस वक्त के मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक बेहद काउंटर कल्चरल और बड़ा स्टेटमेंट था। ब्लेम शिफ्ट मत करो, अपने दिल की लालच को ठीक करो,
वही कि नीयत सुधारो।
यही वो कड़ी शर्त है। भाषण इस बात पर जोर देता है कि कानून चाहे कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, वो सिर्फ आपके बाहरी कामों पर बंदिश लगा सकता है, वो आपका कैरेक्टर नहीं बदल सकता।
कैरेक्टर तो अंदर से बदलता है।
बिल्कुल, दिल का बदलाव तब होता है जब आपकी नीयत साफ हो। बी परफेक्ट यानी पूर्णा बनो, जिस ग्रीक वर्ड टेलियोस से आता है, उसका मतलब मैच्योरिटी और होलनेस से है।
एक सफर की तरह।
हाँ, ये कोई ऐसी डेस्टिनेशन नहीं है जहां आपने चेकलिस्ट बनाई और पहुंच गए। ये रोशनी और नमक जैसी नीयत को अपने अंदर पैदा करने का एक निरंतर सफर है।
तो इस गहरे विश्लेषण से एक बात तय है कि सर्मन ऑन द माउंट सिर्फ उन कड़े नियमों की लिस्ट नहीं था जिन्हें मानकर कोई भी अपने लिए एक आरामदायक रिलीजियस प्रोफाइल बना ले। इसने सीधे उस दिखावे पर वार किया।
एकदम।
इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं इस फेंस और हार्ट यानी नियम और नियत की बहस को एक मॉडर्न नजरिए से देखना चाहती हूँ। आज के इस डिजिटल दौर में जहाँ हम सब इंटरनेट पर अपनी प्रोफाइल को परफेक्ट रखने, अच्छे हैशटैग लगाने और वर्चुअल सिग्नलिंग करने में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया कैंसिल कल्चर इस बात पर फोकस करता है कि किसी ने कहां कौन सा नियम तोड़ा, किसने कौन सी फेंस फांदी।
हाँ, आजकल यही होता है।
जरा सोचने वाली बात है कि अगर इस अंदरूनी बदलाव यानी हार्ट लेवल एथिक को आज की ऑनलाइन आउटरेज और लाइक्स की भूख पर लागू किया जाए तो हमारी ये सोसाइटी कैसी दिखेगी। हम दूसरों के पुराने ट्वीट्स ढूंढकर उन्हें पब्लिकली कैंसिल करते हैं ताकि दुनिया को लगे कि हम सही हैं, पर अंदर ही अंदर हम उसी ईगो और नफरत से भरे होते हैं जिसका भाषण में जिक्र है। क्या हम सच में इस डिजिटल दुनिया को उस रोशनी और नमक की तरह बेहतर बना रहे हैं, या सिर्फ अपनी इमेज चमकाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने का एक बेस्वाद खेल खेल रहे हैं।
ये वाकई में एक लंबा असर छोड़ने वाला विचार है। दुनिया को ठीक करने से पहले अपनी उस आंख और उस नियत की छानबीन करना जिससे हम दुनिया को देखते हैं, यही शायद इस सदियों पुराने भाषण की सबसे बड़ी मांग है।
आज के इस विश्लेषण में ऐतिहासिक पन्नों के जरिए नैतिकता की इस भूल भुलैया में उतरना सच में काफी खास रहा। उम्मीद है इस आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को सुनने वाले भी इन विषयों पर खुद के अंदर झांक कर गहराई से सोच विचार करेंगे। आगे भी ऐसे ही रोचक और दिलचस्प मुद्दों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। शुक्रिया।